पेज नंबर 194 देवी का चित्र दिया। चित्र राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस राजकुमारी से शादी कर ली। बाद में मालूम हुआ कि व्यापारी के वेश में स्वयं वास ही आए थे। पृथ्वी देवी रानी होकर आई तो, लेकिन पहली रानी विशाल नेत्रा के वैभव से उन्हें ईर्ष्या होने लगी। एक दिन जब विशाल नेत्रा राजा के साथ उद्यान में क्रीड़ा के लिए गई तो पृथ्वी देवी जिन मंदिर चली आई। यहाँ मुनि पिहिताश्रव ने उन्हें धर्मोपदेश दिया और साथ ही पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी। नागकुमार इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप पैदा हुआ। नागकुमार उस पुत्र का नाम इसलिए पड़ा क उत्पन्न होने के बाद राजा और रानी पुत्र को लेकर फिर मुनि के दर्शन के लिए गए। इधर राजा रानी मुनि से बातें कर रहे थे, उधर पुत्र कुएं में गिर पड़ा। कुएं में एक नाग ने उस राजकुमार की रक्षा की और वहां से वह राजकुमार को नाग लोक ले गया। वहीं उसका नाम नागकुमार हुआ और उसने एक नाग कन्या से शादी भी की। कुछ दिन नागलोक में रहने के बाद नागकुमार पृथ्वी पर आया। यहां उसने अपनी मां की दुर्दशा देखी। राजा ने उसे दंड देकर उसके सभी आभूषण छीन लिए थे। नागकुमार अपनी मां को आभूषण पहनाने के लिए जुआ खेलने गया और जीतकर बहुत सा आभूषण ले भी आया। जब राजा ने ये सुना तो स्वयं भी उसे जुआ खेलने के लिए बुलवाया और अपने पुत्र से जुए में सारा राज पाठ हार बैठा। नागकुमार ने केवल अपनी मां के गहने लेकर बाकी सब कुछ पिता को लौटा दिया। नागकुमार के ऐसे ही प्रतापी कार्यों से उसके सौतेले भाई श्रीधर को ईर्ष्या हुई। उसने नागकुमार की हत्या करने का प्रयत्न किया लेकिन सफल न हो सका। इसके विपरीत नागकुमार ने बिगड़ैल हाथी को ठीक करने जैसे जीवट के कार्यों से लेकर वंशीवादन जैसे कलापूर्ण कार्यों में भी उसके ऊपर विजय प्राप्त की। इस सिलसिले में नागकुमार ने अनेक शादियां की लेकिन सभी रानियों में उसे लक्ष्मीमती ही प्रिय थी। एक दिन उसने मुनि पिहिताश्रव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में दोनों ने श्रुतपंचमी व्रत किया था। इस पर मुनि श्रुतपंचमी व्रत का विधान बताते हैं। नागकुमार बहुत दिनों तक सुख पूर्वक जीवन बिताने के बाद अंत में तपस्या करने चले जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। कथा में ईर्ष्या कलह शौर्य स्नेह आदि अनेक लौकिक दशाओं के अतिरिक्त पाटलपुरी नागलोक आदि की बहुत सी अलौकिक घटनाएं भी वर्णित हैं। वर्णन कहीं कहीं बड़ा ही यथार्थवादी दिखाई पड़ता है। जैसे एक स्थान पर वेश्या बाजार का इस प्रकार चित्रण है। कावी वेश चिंतई गए सुवना ए थन एयहो नहीं अनम्यना। कावी वेश चिंतई की वद्धि नीलाले एन न कड्या। कावी वेश चिंतई की हारे कंदू न छिन्नड अनकुमारेन। पेज नंबर 195। कावी वेश हरगु समप्पर खिज जई तप्पर कंपर। कावी वेश रस सलिले सिंचिय वेवई वली घुली रोमंचिय। तावीन कलरव भासिनिये देवदते राय विलासिनिये। हेय उल्लय कामदेव ठविया कय पंजलि हत्थे वियन वियु। परमेसर कारवनु वियप्पही जिय मनु तेह घर पंगनु चप्पही। जस चरयु यशोधर अथवा जस के जीवन चरित को लेकर भी जितने काव्य लिखे गए हैं उनमें पुष्पदंत का ही जस चरयु सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जस चरयु पुष्पदंत की तीसरी और अंतिम कृति है। इसे उन्होंने मान्य खे की लूट के समय 972 ई-0 के आस पास लिखा था। चार संधियों के इस छोटे से खंड काव्य में कापालिक मत के ऊपर जैन धर्म की विजय की कहानी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कही गई है। योधेय देशीय राजपुर नगर में एक दिन कापालिकाचार्य भैरवानंद पधारे। उनकी महिमा सुनकर राजा ने उन्हें पास बुलाया और आकाश में उड़ने की सिद्धि मांगी। भैरवानंद ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए देवी की विधिवत पूजा का विधान बताया। पूजा विधि का मुख्य अंग था न युग्म की बलि। राज पुरुषों को तत्काल आज्ञा हुई और वे नगर में घूमते हुए दो बालक और बालिका क्षुल्कों को पकड़ लाए। ये क्षुल्लक सुदत्त नामक तपस्वी के शिष्य थे। राजा के सामने जब ये क्षुल्लक लाए गए तो उनके मुख पर कुछ ऐसे सामुद्रिक चिन्ह दिखाई पड़े कि राजा ने उनके वध की आज्ञा देने की जगह उनका परिचय पूछा। क्षुल्लकों ने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की सारी कहानी सुना दी। कथा प्रसंग में भेद खुला कि इनमें एक पूर्व जन्म का यशोधर है और दूसरी बालिका उसकी माँ है। विविध कर्मों के अनुसार ये कभी पशु योनि पैदा हुए और कभी नर योनि में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में और कभी माँ बेटे के रूप में। वर्तमान राजा और रानी भी उनके साथ पूर्व जन्मों में अभिन्न रूप में जुड़े हुए थे। ये सब सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और अंत में भैरवानंद के साथ राजा रानी क्षुल्लकों के गुरु सुदत्त के पास जाकर जैन धर्म में दीक्षित हो गए। पूरी कथा बड़ी ही पेचीदी है। केला के पात पात में पात की तरह इसमें कहानी के भीतर कहानी है। नाना जन्मांतरों की ऐसी पेचीदी कहानी अपभ्रंश में कोई नहीं है। आदि और अंत में धार्मिकता के पुट के अतिरिक्त बीच की शेष कथा अत्यंत यथार्थवादी है, जिसमें राजाओं के नाना कूट छल पर स्त्री आसक्ति पर एक डॉक्टर शून्य परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा करजा सीरीज में संपादित 1931 ई 0 पेज नंबर 196 पुरुष अनुरक्ति धोखा धड़ी हत्या चोरी आदि मानवीय दुर्बलताओं का निर्मम उद्घाटन है। काव्य में जगह जगह महाकवु पुष्पदंत की वर्णन शक्ति का पता चलता है। आरंभ में उन्होंने भैरवानंद कापालिक का बड़ा ही सटीक चित्रण किया है। वहु सिख ही सहयउ दम्भधारी घारी घरी हिंदी हुकार कारी सिर टोपी दियन रावण वनसा झपवी संथिय दोनी कण अंगुल दू 30 परिमाणु दंडु हथे उफालिवी गहर चंडु गली जोगवट्टु सजजियु विचित्तु पाउडिय जम्मू पई दियनु दतु तड 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 तडिया सिंगु सिंगगु छेवी क्यूतेन चंगु। भैरवानंद का क्या ही सुंदर वेश है। दोनों कानों को ढंके हुए अनेक रंग वाली टोपी, हाथों में उछलता हुआ 32 अंगुल लंबा डंडा, गले में विचित्र योग पट गाली गली चंद खड़काते और सिंगा बजाते हुए दम्भपूर्ण ढंग से घूमना। इसी तरह राज प्रांगण का भी एक जगह यथार्थ चित्र उपस्थित किया गया है। कवि वहां के आडंबरपूर्ण निर्जीव और नीरस वातावरण को देखकर विषण हो उठता है और अपने इस भाव को खुलकर प्रकट कर देता है। अत्थान भूमि गौ मणि विसनु कन्य मय रयन विथरी निसनु दो वासी चमरी महु पदंती बहु दुख सहासी सहमंडवी नचचंतर एयाई जैवी न घटंती खुज जाय वावनाय कोडावनाय निरु सुहराय महु पुनु सुविरथो दुहराय पोथय वायनु मान सवनह जाम जनी जनी हरेजु सरसु अवलोईना वडमही अनवंत पदियाव्याही नावर कुमित आत। करकंडू के जीवन चरित पर लिखी गई कहानियों में कनकामा मुनि 1065 ई 0 का करकंडू चरित ही अपभ्रंश में इस समय तक प्राप्त है। करकंडू चरित कई एक श्री हीरालाल जैन द्वारा कारंजा जैन ग्रंथमाला में संपादित 1934 ई 0 निरु पेज नंबर 197 लोगों ने लिखा है। रैधु लिखित करकंडू चरित का भी उल्लेख मिलता है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। जैन परंपरा के अनुसार करकंडू ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व हुए थे। इनका मान दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में है। बौद्ध जातकों में भी ये प्रत्येक बुद्ध रूप में स्वीकृत एक महात्मा है। मुनि कनकामा ने ऐसे ही महापुरुष को अपना चरित नायक बनाया है। कनकामा के विषय में इतना ही मालूम है कि वे आसाय नगरी के रहने वाले थे जो संभवतः बुंदेलखंड में कहीं था। 10 संधियों के इस प्रबंध काव्य के 3 चौथाई भाग में करकंडू की मुख्य कथा है और शेष चौथाई भाग में 9 अवांतर कथाएं हैं। इन अवांतर कथाओं में से एक कथा नरवाहन दत्त की है जो संस्कृत में प्रचलित कथा से थोड़ी भिन्न है। ये अवांतर कथाएं राजा को नीति की शिक्षा देने के बहाने कही गई हैं। मुख्य कथा इस प्रकार है। एक बार चंपाधीश दधिवाहन रानी मदनावती के दोहद निमित्त हाथी से कहीं जा रहे थे कि सहसा हाथी मदोन्मत होकर भागने लगा। ऐसे संकट में रानी की सलाह से राजा तो एक डाल के सहारे बच निकले, लेकिन रानी एक भूतहे स्थान पर पहुंच गईं और वहीं उन्होंने पुत्र प्रसव किया। पुत्र को एक माली ने पाला और आगे चलकर हाथी द्वारा परीक्षण के बाद उसे चक्रवर्ती समझकर दंतीपुर का राजा बनाया गया। वहीं से उसने सौराष्ट्र की राजकुमारी से विवाह किया। उस राजकुमार का नाम करकंडू इसलिए पड़ा कि बचपन में उसके कर में कंडू अथवा खुजली हो गई थी। कुछ दिनों बाद चंपा के राजा ने करकंडू के पास अधीनता स्वीकार कर लेने की धमकी भेजी, परंतु इस धमकी की परवाह न करके करकंडू ने युद्ध का निश्चय किया। युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान में पिता ने पुत्र को पहचान लिया और तुरंत अपना सारा राज पाट सौंप दिया। इसके बाद करकंडू ने दक्षिण के चोल, चेर, पांड्य राज्यों पर भी चढ़ाई की। इस अभियान में उसकी रानी मदनावती हर ली गई। दुखी राजा को एक सुर ने आकर रानी के मिलने का आश्वासन दिया। करकंडू वहां से सिंगल गए। सिंगल नरेश ने उसके साथ अपनी पुत्री ब्याह दी। नई रानी के साथ करकंडू जब समुद्र मार्ग से लौट रहा था तो एक मत्स्य ने बाधा दी। राजा ने उस मत्स्य को मार दिया, लेकिन फिर स्वयं एक विद्याधर द्वारा हर लिया गया। रानी ने काफी व्रत वगैरह करके उसे प्राप्त किया। लौटती बेर करकंडू ने दक्षिण के राज्यों को जीत लिया और राह में उसे पहली रानी भी प्राप्त हो गई। अंत में एक दिन मुनि शीलगुप्त से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर राजा करकंडू तपस्या के लिए निकल पड़ा। नाना देश देशांतरों में भ्रमण के कारण कथा में प्रसार और वर्णन में व्यापकता आ गई है। कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से इस काव्य की कथा अत्यंत समृद्ध है। अनेक स्थलों पर कहानी में लोक कथाओं की झलक मिलती है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि में रचना सामान्य कोटि की है। पेज नंबर 198 कथा काव्य भविष्यत कहा। पौराणिक पुरुषों की गाथाओं और जनश्रुतियों में प्रसिद्ध राजकुमारों के चरित काव्यों के अतिरिक्त अपभ्रंश में कुछ ऐसे भी प्रबंध काव्य रचे गए जिनकी कहानी कवि की एकदम कल्पित वस्तु है अथवा किसी लोक कथा के आधार पर कवि द्वारा स्वतंत्र रूप से गढ़ी गई है। ऐसे आख्यान काव्य का चरित नायक कोई प्रसिद्ध राजा अथवा राजकुमार नहीं होता, बल्कि सामान्य वणिक पुत्र होता है। अपभ्रंश में इस तरह का एक कथा काव्य मिलता है। ये है धनपाल 10वीं शताब्दी ई० रचित भविष्यत कहा अथवा भविष्यदत्त कथा। इसका दूसरा नाम सुयपंचमी कहा भी है, क्योंकि सुयपंचमी महात्म्य के लिए ये कही गई है। 22 संधियों के इस प्रबंध काव्य में एक तरह से तीन तरह की कथाएं जुड़ी हुई हैं। कथा का पहला भाग शुद्ध घरेलू धर्म की कहानी है, जिसमें दो विवाहों के दुखद पक्ष को उजागर किया गया है। इसमें वणिक पुत्र भविष्यदत्त के भाग्य की गाथा है, जो अपने सौतेले भाई बंधुदत्त के द्वारा कई बार छले जाने पर भी अंत में जिन महिमा के कारण सुखी होता है। इस काव्य की कथा का मुख्य अंश यही है और कवि ने इसे आराम से 14 संधियों में कहा है। 14वीं संधि के आरंभ में उसने स्वयं इस कहानी का सारांश इस प्रकार दिया है। उपपनु चिरु वनि वरह गोति परिवदिधौ माम साली पुट्टि वाणिज्य गौ सवायरेन धतियु साफ्ति भायरेन परिहविन गपि नरनाहु दिथ तेनवी सम्मान्युन कियु वरिछु हुआ बहु मंडलवई नर वरिंदु उच्चायु निय सुही सयन विन्दु जानेविनु मच्चलोई मन करहु गव्व संपय विहोई। पारंपर कवह लहियुमेव मई झमकियु सरसई वसिन एव। पूरी कथा इस प्रकार है कि राजपुर में धनपति नामक एक नगर सेठ रहता था। उसने उसी नगर के एक दूसरे वणिक हरिबल की कन्या कमलश्री से विवाह किया, जिससे कुछ दिनों बाद भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। न जाने पूर्वजन्म के किस कर्म के कारण धनपति का प्रेम कमलश्री से हट गया और एक श्री दलाल और गुणे द्वारा गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में संपादित 1923 पेज नंबर 199 उसने कमलश्री को पीहर भेजकर सरूपा नामक एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। शीघ्र ही सरूपा से बंधुदत्त नामक पुत्र हुआ। जब बंधुदत्त सयाना हुआ तो पिता ने उसे वाणिज्य के लिए देशांतर जाने की आज्ञा दी। बंधुदत्त ने अनेक वनेक पुत्रों के साथ कंचनदेश की यात्रा की। भाई को व्यापार के लिए जाते देख भविष्यदत्त ने भी साथ हो लेना चाहा। कमलश्री ने पुत्र को बहुत मना किया कि बंधुदत्त के साथ मत जाओ, लेकिन भविष्यदत्त ने बंधुदत्त पर विश्वास करके यात्रा आरंभ कर दी। यात्रा पर जाने से पहले बंधुदत्त की मां ने पुत्र को उपदेश दिया कि भविष्यदत्त को उठाकर समुद्र में फेंक देना, और भविष्यदत्त की मां ने सदाचार पालन का उपदेश दिया। यात्रा आरंभ होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक तूफान आ गया और इस सार्थ की नौकाएं तिलक द्वीप से जा लगीं। वहां उतरने पर जब भविष्यदत्त फूल आदि लेने कहीं चला गया तो बंधुदत्त उसे द्वीप में अकेले छोड़कर चल पड़ा। अकेला भविष्यदत्त इधर उधर भटकते हुए एक ऐसी वैभवशाली नगरी में पहुंचा जो जनशून्य थी। वहां उसे एक सुंदरी मिली और वहीं एक राक्षस भी आ टपका। उसने उन दोनों का विवाह करा दिया। 12 वर्ष तक उस नगरी में सुखपूर्वक दिन बिताने के बाद भविष्यदत्त अंत में अपार धनराशि लेकर अपनी पत्नी के साथ घर चलने को प्रस्तुत हुआ। ज्यों ही वह किनारे पहुंचा, उसका भाई बंधुदत्त भी आ पहुंचा। उसने अपने किए पर पश्चाताप प्रकट किया। चलने से पहले भविष्यदत्त ज्यों ही जिन मंदिर में प्रणाम करने गया, बंधुदत्त उसकी पत्नी सहित सारी धनराशि लेकर निकल गया। घर आकर बंधुदत्त ने भविष्यदत्त की पत्नी को आपनी बतलाया और विवाह इत्यादि की तिथि निश्चित कर ली। इधर भविष्यदत्त की मां सुय पंचमी व्रत रहती है और उधर भविष्यदत्त जिनकी पूजा करता है, इन दोनों के फलस्वरूप उसकी मदद के लिए एक देव उपस्थित हुआ। उसने अपार धनराशि के साथ भविष्यदत्त को घर पहुंचा दिया। भविष्यदत्त ने घर पहुंचकर सारा भेद खोल दिया और राजा के पास न्याय की मांग की। राजा ने बंधुदत्त को दंड देकर भविष्यदत्त को उसकी पत्नी वापस करा दी। यही प्रथम खंड समाप्त होता है। दूसरे खंड में क्रमशः दो प्रकार की कहानियां हैं। पहली तो ये कि कुरुराज और तक्षशिला नरेश में लड़ाई हुई, जिसमें भविष्यदत्त ने महत्वपूर्ण कार्य किया और उसी के पराक्रम से कुरुराज की जीत हुई। पुरस्कार स्वरूप राजा ने आधा राज्य और अपनी लड़की भविष्यदत्त को दी। कहानी का अंतिम मोड़ ये है, जिसमें भविष्यदत्त के विविध पूर्वजन्मों की अद्भुत कहानियां कही गई हैं और जिनके सुनने पर वह अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य देकर तपस्या के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार दूसरे खंड की कहानी ऊपर से जोड़ी हुई अथवा कवि द्वारा जान बूझ कर स्वदेशीय विकृत की हुई मालूम पड़ती है। कहानी के पहले खंड में लोक कथा का जो सहज रस है, वह पेज नंबर 200 अंतिम खंड के स्वदेशीय मोड़ से नष्ट हो जाता है। संभवतः इसीलिए धनपाल ने स्वयं ही इस कथा के दो खंड कर दिए हैं। काव्य में कई मार्मिक स्थल हैं जहां धनपाल की काव्य प्रतिभा स्फुट हुई है, लेकिन अनेक दृष्टियों से वह प्रसंग सर्वोत्तम है जब भविष्यदत्त तिलक द्वीपक में अकेला छोड़ दिया जाता है और व्याकुल होकर इधर उधर घूमता है। न जाने कितने बड़े बड़े हौसले लेकर वह घर से निकला था, मां से कितने वादे उसने किए थे, लेकिन अब सभी आशाओं पर पानी फिर गया। वह अकेले पड़ा पड़ा सोच रहा है। गयम निफल ताम सवम वनिजम हुवम अमह गौतमी लज्जावनिजम अन जत्ता अन वितर अन मित्त न गेह अन धम्म अनकम अन जीयम अन देह अन पुत्त कलत अन इथे अन दिथे गयम गयुरे दूर देसे पैठे। और ऐसे ही विषण मन वाले व्यक्ति की आंखों के सामने वह उजाड़ नगरी पड़ती है जिसमें सब कुछ है लेकिन कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। देखकर लगता है कि सब कुछ सजा हुआ छोड़कर कोई कहीं चला गया है। ये देखता है कि वावी कूव सुप्यहूव सु पसन वन्यम मद विहार देहुरेहि सुट तम्रवन्यम देव मंदिरेजु तेजु अंतर नीचय सो अन तिथु जो कयाय पूज्यून पिछय सुरही गंध परिम पसु नहीं फसे सो अन तिथु जो करेन गिहुन बासे पिक्स साली धन्यम पंथयम्मी ताने सो अन तिथु जो धर्मी लेवी तम पराने सर वरम्मी पंख्याय भ मर भम कंदिरे सो अन तिथु जो खुदेवी नेई ताय मंदिरे हथ गिज वर भलाई विभेन पिक्खय केन कारणेन को वी तोयुन अनभक्खय। कितना बड़ा अभिशाप है कि प्रसून सुर भी गंध परिमल से स्पर्श कर रहे हैं लेकिन उन्हें हाथ में लेकर सूंघने वाला कोई नहीं है। पके हुए धान के दाने बिखर रहे हैं लेकिन उन्हें घर ले आकर उपभोग करने वाला कोई नहीं है। सरोवरों में गूंजते हुए भौरों से कमल घिरे हैं लेकिन उन्हें तोड़कर मंदिर में ले आने वाला कोई नहीं है। और फलों के भार से पेड़ स्वयं ही झुकाए हैं लेकिन आश्चर्य है कि उन्हें चखने वाला कोई नहीं है। और उपवन से आगे चलकर वह राजभवन के पास पहुंचता है तो उसका हृदय मुंह नहीं एक एक चीज को देखकर भर आता है। गवाशों को आधा खुला पेज नंबर 201 छोड़कर कोई चला गया है जैसे वे किसी नववधु की अधखुली आंखें हों। फलक पर गुह्य अंतरदेश है लगता है जैसे वे वनिताओं के अधखुले उरुप्रदेश हों। भरे पूरे समृद्ध भांत स्वयं अपना अंतर्भाग दिखला रहे हैं जैसे नागिन के मुकुट के चिन्ह हों। रंधों में एक धनाभिलाषी पुरुषों की तरह दीपक चल रहे हैं। योगियों की तरह अविचलित खंभे खड़े हैं जैसे सूरतारंभ के समय मिथुन निर्विस्न हो गए हों। गोपदों से परिवर्जित मार्गों वाले गोपुर दिखाई पड़ रहे हैं जो महत्तर भवन बहुत दिनों तक जंगकुल थे वे भी अब सूरत समाप्ति के मिथुनों की तरह निर्ध्वनि हो गए हैं। जो घाट पनिहारिनियों के निरंतर आने जाने से नूपुरों की झनकार से गुंजित रहते थे वे अब विधिवश निःशब्द हो गए हैं। ये सब देखते देखते भविष्यदत्त के अंग उन्मथित हो उठे और वह अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखता हुआ धीरे धीरे संचरण करने लगा। पिक्खई मंदिराय फल अद्भु घाड्य जाल गवक्खिन आद पलोयराय नाव वही आनियन कडक्खिन फलहंत्रेन दरिस्य गुजझंतर देसई आद पयंधियाय विल्यान व उरुपेसी पिक्खर आवनाय भार्यंतर भांद समिदिन पैडिय पन्याय न नायनी मऊदई चिंधर एक धनाहिलास पुरिजाय व रंधी पलितई वरियत जुवानी वड्डकुमारिहु चित्तई जोयसा विवाय करना इन व जोई थम्भई व सूर्यारंभंग विहडिय नेसनाय मिहुनान परिवज्य गोपय मग्न अन गौराय पवनुध्व धवल धयगई जाय जनावलाय चिरु आसी महत्तर भवनी ताय मीनी जझुनाय सूर्यई संपत्तई मिहुई जाय निरंतराय चिरु पानी हारेहु तिथई ताय वी विहिवसेन हुई नीसद सुदुथई सियवंत अनियानी नियवी तहो उमाहु अनगई भरी पिक्खंतु नियय पदिबिंब तनु सनियु सनियु संचरई। इस उजाड़ नगरी का वर्णन पढ़ते पढ़ते लोक कथाओं की वह नगरी याद आ जाती है जो विपत्ति के कारण रातों रात क्या से क्या हो जाती है। हाथी हथिसारे मर जाते हैं और घोड़ा घुड़सारे सारा सोना कोयला हो जाता है और सभी नगर निवासी जहाँ के तहाँ पत्थर हो जाते हैं। अह पिक्खर पासायंतराय भविष्यत कहा, जैसे लोक कथाओं पर आधारित काव्य संभव है अपभ्रंश में और भी लिखे गए हों और धीरे धीरे विद्वानों के प्रयत्न से प्रकाश में आए। पेज नंबर 202 जैन मुनियों का रहस्यवादी काव्य। जैन मतावलंबी कवियों के इन प्रबंध काव्यों से भिन्न जैन मुनियों की कुछ मुक्तक रचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें जैन प्रबंध काव्यों की सी सांप्रदायिक गंध नहीं मिलती। जोइंदु 10वीं शताब्दी ईस्वी। परमात्म प्रकाश और योगसार दो तथा रामसिंह 1100 ई० के आसपास का पाहुर दोहा तीन ऐसी ही रचनाएं हैं। सांप्रदायिक सीमा में रहते हुए भी इनके रचयिता जैन मुनि उस सीमा से ऊपर उठकर अत्यंत उदार ढंग से अपनी बातें कहते दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार वैष्णव भक्त कवियों ने ब्राह्मण धर्म को सीमा में रहते हुए भी उससे ऊपर उठकर प्रायः ब्राह्मण धर्म की शास्त्रीय तथा आचार संबंधी संकीर्णताओं के विरुद्ध विचार व्यक्त किया था, उसी प्रकार इन जैन मुनियों ने भी जैन धर्म की शास्त्रीय रूढ़ियों और बाह्यादंबरों के विरुद्ध लोक सामान्य के लिए सरल और उदार ढंग से जीवन मुक्ति का संदेश दिया। उद्देश्य में व्यापकता और विचारों में सहिष्णुता होने के कारण इन मुनियों की पारिभाषिक पदावली काव्य की शैली भी सहज सामान्य और लोक प्रचलित हो गई। परमात्म प्रकाश। जोइंदु और रामसिंह दोनों ही जैन मुनियों के विचारों में अद्भुत साम्य है। यहाँ तक किसी समय उपर्युक्त तीनों रचनाएं एक ही कवि जोइंदु की कृति मानी जाती थीं। पीछे अनेक ठोस प्रमाणों के आधार पर यह पुष्ट हो गया है कि ये दो भिन्न कवियों की कृतियां हैं। यूं भी यदि परमात्म प्रकाश और पाहुर दोहा की भाषा शैली की तुलना की जाए तो स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा। परमात्म प्रकाश की भाषा अधिक समास बहुल जटिल तथा अंत्व विधान बहुल दिखाई पड़ती है, जबकि पाहुर दोहा की भाषा पुरानी हिंदी के निकट की तथा बोलचाल की सरल उक्ति प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त परमात्म प्रकाश ज्ञान गरिष्ठ और विचार प्रधान है, जबकि पाहुर दोहा में लोक प्रचलित दैनंदिन जीवन के उदाहरणों के सहारे बड़े सजीव और मार्मिक ढंग से तत्व ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें अनायास कह दी गई। परमात्म प्रकाश दो अधिकारों में विभक्त 337 छंदों में योजनानुसार लिखी हुई रचना है। इसमें तत्वज्ञान को विविध विषयों में बांटकर एक एक करके समझाया गया है। पहले अधिकार के विषय सामान्यतः आत्मा परमात्म द्रव्य गुण पर्याय एक डॉक्टर शून्य आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय द्वारा रामचंद्र जैन ग्रंथमाला में संपादित 1937 ई० दो श्री हीरालाल जैन द्वारा कौंजा सीरीज में संपादित 1933 ई० तीन श्री हीरालाल जैन द्वारा कौंजा सीरीज में संपादित 1933 ई० पेज नंबर 203 कर्म निश्चय सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व आदि हैं और दूसरे अधिकार में मोक्ष के स्वरूप मोक्ष के फल निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग अभेद रत्नत्र संभाव पाप पुण्य की समानता शुद्धोपयोग परम समाधि की चर्चा है। योगसार। योगसार परमात्म प्रकाश की अपेक्षा अधिक सरल और मुक्त रचना है। विषय विवेचन में स्पष्टतः किसी प्रकार की योजना अथवा क्रम का पता नहीं चलता। परमात्म प्रकाश की ही बातों को इसमें सुबोध तथा काव्योचित ढंग से कहने की कोशिश की गई है। परमात्म प्रकाश से यह छोटी रचना है। इनमें कुल मिलाकर 108 छंद हैं। जोइंदु की दोनों ही कृतियां अधिकांशतः दोहा छंद में ही पाहुर दोहा पाहुर दोहा 222 दोहों यद्यपि इसमें दोहा के अतिरिक्त कुछ दूसरे छंद भी हैं की छोटी सी रचना है। इसके संपादक श्री हीरालाल जैन के अनुसार जैनियों ने पाहुर शब्द का प्रयोग किसी विशेष विषय के प्रतिपादन के अर्थ में किया है। कुंदकुदाचार्य के प्रायः सभी ग्रंथ पाहुर कहलाते हैं, यथा समेसार पाहुर, प्रवचन सार पाहुर, भाव पाहुर, बोध पाहुर आदि। गोमसार जीवकांड की 341वीं गाथा में इस शब्द का अर्थ अधिकार बतलाया गया है। अह्यारो पाहुड्यम। उसी ग्रंथ में आगे समस्त श्रुतज्ञान को पाहुर कहा गया है। इससे विदित होता है कि धार्मिक सिद्धांत संग्रह को पाहुर कहते थे। पाहुर का संस्कृत रूपांतर प्रभुत किया जाता है, जिसका अर्थ उपहार है। इसके अनुसार हम वर्तमान ग्रंथ के नाम का अर्थ दोहा का उपहार ले सकते हैं। रामसिंह राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए उनकी उपमाओं पर भी स्थानीय प्रभाव स्पष्ट है। अन्य कवियों ने चंचल मन की उपमा जिन पदार्थों से दी है, रामसिंह ने उन उपमाओं को छोड़कर मन की उपमा करहा ऊंट से दी है, शायद इसलिए कि उनके लिए गति की तीव्रता का प्रतीक करहा ही हो। पाहुर दोहा के रहस्यवाद पर विचार करते हुए श्री हीरालाल जैन ने लिखा है कि इन दोहों में जोगियों का आगम, अचित चित, देह देवली, शिव शक्ति, संकल्प विकल्प, सगुण निर्गुण, अक्षर बोध विबोध, वाम दक्षिण मध्य, दोपथ रवि शशि पवन काल आदि ऐसे शब्द हैं, और उनका ऐसे गहन रूप में प्रयोग हुआ है कि उनमें हमें योग और तांत्रिक ग्रंथों का स्मरण आए बिना नहीं रहता। इनकी भाषा सांकेतिक है और सांकेतिकता में इनकी समानता बौद्ध सिद्धों के चर्यापदों और दोहा कोशों में दिखाई पड़ती है। एक पाहुर दोहा भूमिका प्री 013 पेज नंबर 204। लेकिन परमात्म प्रकाश योगसार और पाहुर दोहा तीनों को एक साथ रखकर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की रहस्यात्मक प्रवृत्ति उन सब में विद्यमान है। और यदि इन जैन मुनियों के दायरे से आगे बढ़कर उस समय के अन्य धर्मावलंबी संतों की रचनाओं पर दृष्टिपात किया जाए तो दिखाई पड़ेगा कि ऐतिहासिक रूप से वह युग ही ऐसा था जिसमें प्रत्येक धर्म के भीतर इस तरह के उदारमना चिंतक कवि पैदा हुए थे, जो अपने मत और समाज की रूढ़ियों का विरोध करते हुए मानवता की सामान्य भाव भूमि पर एक साथ खड़े थे। भारतीय समाज में एक ओर स्थिति स्थापक पुराण पंथी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और दूसरी ओर रूढ़ि विरोधी नवोन्मेष शालिनी शक्तियों का जो संघर्ष दिखाई पड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति धार्मिक पदावली में उस युग के साहित्य में भी होता है। ये जैन मुनि उसी नवोन्मेष की अभिव्यक्ति हैं। मानवता की सामान्य भाव भूमि पर खड़े होने के कारण ही इनका अन्य मतों से कोई विरोध नहीं है। सबके प्रति ये सहिष्णु है और इनका विश्वास है कि सभी मत एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं, आर्य एक ही परम तत्व को विविध नाम से पुकारते हैं, जो परम पहु परम पहु हरि हर वंभु विबुद परम पयासु भनंति मुनि सो जिन देउ विसुद परमात्म प्रकाश 323 सो सियु संकरु विन्हु सो रुद्धवी सो बुद्ध सो जिनु ईसरु बंभू सो अनंतु सो सिद्धु योगसार 105। ये इतने मुक्त मन थे कि प्रकाश जहां से भी मिले उसे स्वीकार करने के पक्ष में थे। ग्रंथ के आरंभ में प्रायः कविजन अपने आराध्य देव सांप्रदायिक देव अथवा गुरु की वंदना करते हैं, लेकिन रामसिंह ने प्रकाश दाता मात्र को अपना गुरु वन इन कवियों की रचनाओं के लिए रहस्यवाद शब्द का प्रयोग किसी अधिक उचित शब्द के अभाव में ही किया जा रहा है। अंग्रेजी में इस तरह की रचनाओं के लिए मिस्टिक और मिस्टिसिज्म शब्दों के प्रयोग की परंपरा सी चल पड़ी है। नाथ सिद्ध और संत कवियों पर भी यही शब्द चस्पा किया जाता है और आधुनिक रोमांटिक कवियों के लिए भी लागू होता है। व्यक्तिगत रूप से लेखक इस तरह के पुराने कवियों के लिए मिस्टिक शब्द को अनुपयुक्त और भ्रामक समझता है। सत्थु पंतुवि होई जडु पशून्य प्रशून्य 206 अथवा चेला चेली पुथ्यही तुसई मुडु निभंतु पशून्य प्रशून्य 211 या धम्मुन परी होई बाद धम्पुन पोथा पिच्छी योगसार 47 और बहुयही पठी मूड पर तालु सुकर जेन एक कुजी अधघरु तम पहु सिवपुरी गम्मई जेन 5020 97 पेज नंबर 205 माना है चाहे वह सूर्य हो चाहे चंद्रमा चाहे ज्ञानी। इसी तरह जो हिंदू ने भी ज्ञान मात्र को सर्वोपरि मानकर उस परमात्म की वंदना सबसे पहले की है जो नित्य निरंजन ज्ञानमय है। प्रकाश और ज्ञान के ऐसे खोजियों के लिए स्वाभाविक है कि वे पुस्तकों के तथाकथित ज्ञान को ही ज्ञान न समझें। शास्त्र ज्ञान शोध के लिए अधिक से अधिक सहायक हो सकता है, वह ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता शास्त्रों से ही बनती है, संकीर्ण मर्यादाएं विभिन्न मत के ग्रंथों से ही निर्धारित होती हैं। फलत इन मुनियों ने अक्षर ज्ञान तथा पुस्तक ज्ञान का विरोध किया। षड दर्शन का विरोध जो रामसिंह आदि ने किया है, वह इसलिए कि उन्होंने एक ही देव के 6 भेद कर दिए और इस तरह उनसे भेद भावना का प्रसार होता है। व्यवहार के क्षेत्र में ये शास्त्र विरोध और अक्षर खंडन धर्म के ठेकेदारों पंडितों और पुरोहितों पर सीधा प्रहार था। दूसरी ओर इसके द्वारा उस जनसाधारण के लिए ज्ञान का सहज द्वार खुल गया जिन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा प्राप्त न हो सकी थी। अब प्रश्न ये है कि कोरे अक्षर ज्ञान का विरोध करके इन मुनियों ने जो एक अक्षर पढ़ने की राय दी, वह एक अक्षर क्या है? कोई मंत्र है या किसी का नाम है जिसका जाप किया जाए? मुनियों ने कहा कि आत्मा ज्ञान ही वह एक अक्षर है जिसके बाद और कुछ जानना नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा को प्रकाशित करती है जैसे रवि का राग अंबर को। अप्पू प्यासी अप्पू पई जिम अंबरी रवि राव। सिद्धों ने जिसे स्वक संविति अथवा स्वसंवेद्य ज्ञान कहा है, उसे ही इन मुनियों ने आत्मज्ञान नाम दिया है। शास्त्र ज्ञान से अनुभव ज्ञान बड़ा है, ये घोषणा करके इन मुनियों ने सामान्य जन को ज्ञान का बहुत बड़ा आत्मा बल दे दिया। जब आत्मा ज्ञान तथा अनुभव साक्षिक ज्ञान ही सर्वोपरि है तो वह सबके बूते की बात हो सकती है। यह अनुभव साक्षिक ज्ञान इसी देह और मन से संभव है, इसलिए ये देह मन उपेक्षणीय वस्तु नहीं है। यही कारण है कि इन मुनियों ने धर्मोपदेशकों द्वारा अपवित्र कही जाने वाली देह को देवल अथवा देवमंदिर की गरिमा प्रदान की। देहा देवली जो बसई देह अनाई अनंतु पशून्य प्रशून्य 33 मूधा देवली देव नवी नवी मिली लिपपई चिति देहा देवली देव जिनी सो बुझही समचिति योगसार 40 देहा देवली जो वसई सत्य ही सहियउ देव को तही जोई सत्सियु सिधु गवैसही भेउ 5020 53 पेज नंबर 206। ऐसी स्थिति में जबकि ये देह मंदिर ही उस परमात्मा का निवास स्थान हो, अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो इस बात की है कि परमात्मा के आवास इस देह मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखा जाए। चित्त की निर्मलता पर जोर देने का यही कारण है, क्योंकि निर्मल मन में ही उस देव का निवास संभव है, उसी तरह जैसे सरोवर में हंस लीन रहता है। नी मणि निम्मली नानिया निवसई देव अनाय हंसा सरिवरी लीनु जिम महु एहउ पदेहाय पशून्य प्रशून्य 122। देह और मन की पवित्रता तभी संभव है जब इसके तथा इसके कार्यों में आसक्ति न हो। जी देह मन में वास करता हुआ भी उसमें वास न करे, उससे कार्य करता हुआ भी न करे, उसे जोइंदु और रामसिंह दोनों ने उपवस वसिया कहा है। यह मन की वह स्थिति है जिसमें पाप और पुण्य दोनों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। आत्मा की इसी स्थिति को इन मुनियों ने समरस भाव कहा है। इस स्थिति में आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रह जाता, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा हो जाती है। मनु मिलियो परमेश्वरहो, परमेश्वर जी मनस्वियनी वी समरसी हुई रहिय, पुंज चढ़ावू कस्य जो परमप्पा से जी हूँ, जो हूँ सो परमप्पा। यही परम ज्ञान है और यही परम मोक्ष है, क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष है। नानी मुक्त न भन्ति पशून्य प्रशून्य 196। ज्ञान की सूक्ष्म शब्दावली में कही हुई यह बात व्यवहार में सामान्य जन के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुई। आत्मा परमात्मा की गूढ़ बात न समझते हुए भी इन दोहों को पढ़कर अथवा सुनकर साधारण आदमी जो शक्ति का अनुभव करता है, उसका यही रहस्य है कि वह शरीर को ही परमात्मा का निवास समझकर आत्मगौरव अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि यदि एक ही परमात्मा बिना किसी वर्ण जाति भेद के सभी देह मंदिरों में निवास कर सकता है, तो उससे समरस भाव बनाए रखने के लिए शुचिता का आचरण क्यों न किया जाए। इस प्रकार वह शुचिता और समरसता की ओर अग्रसर होता हुआ आत्मा गौरव का अनुभव करता है। पूजा पाठ का अवकाश, मंदिर प्रवेश की अनुमति, तीर्थ यात्रा के स्थान, शास्त्र अध्ययन की सुविधा आदि न मिलने पर भी पवित्रता के द्वारा परम पद को पाने का संदेश कितने बड़े आश्वासन का विषय हो सकता है। इसे सहज ही अनुमान किया जाता सकता है। इन मुनियों ने यही महान संदेश दिया था। पशून्य 249, पशून्य प्रशून्य 22, पेज नंबर 207। बौद्ध सिद्ध कवियों की रहस्य साधना। जैन मुनियों की तरह लगभग उन्हीं के समकालीन पूर्वी प्रदेशों के रहने वाले बौद्ध सिद्धों ने भी रहस्यवादी कविताएं लिखीं। इनमें से सरहपा अथवा सरोरोह बज 8वीं शताब्दी ईस्वी तथा कान्हपा या कृष्णपाद आचार्य 10वीं शताब्दी ईस्वी के दोहा कोश अधिक प्रसिद्ध हैं। दोहा कोशों के अतिरिक्त इन दोनों सिद्ध आचार्यों की और भी कई रचनाएं मिलती हैं, किंतु सबकी भाषा ठीक ठीक अपभ्रंश ही नहीं कही जा सकती। इनकी गीतियां प्रायः देश्य मिश्रित अपभ्रंश में लिखी गई प्रतीत होती हैं। दोहों की भाषा पर भी पूर्वी प्रदेशों की स्थानीय बोली की गहरी छाप है, फिर भी उनका ढांचा मूलतः साहित्यिक अपभ्रंश का ही है। फिर भी आधुनिक विद्वानों ने सिद्धों की भाषा को लेकर कभी उन्हें पुरानी बंगला का कवि कहा है और कभी पुरानी हिंदी का। जैन मुनियों की तरह सिद्धों ने भी शास्त्र, ज्ञान, मंत्र, मंदिर, तीर्थाटन आदि ब्रह्माचारों का खंडन किया है। अपने संस्कार के अनुकूल इस खंडन कार्य में जैन मुनियों का स्वर जहां मध्यम दिखाई पड़ता है, वह सरह और कान्ह अत्यंत उग्र दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने बड़े ही लट्ठमार ढंग से अपनी बातें कही है। जैसे पाखंड का खंडन करते हुए सरह कहते हैं, एक बामहन ही मा जानंत ही भेउ एवी पढ़ियऊ ए चउ बेउ मट्टी पानी कुसलई पंत धरही बैसी अग्गी हुनत कजजे विरही हुआ वही होमे अक्खी दहाविया कड्डुए धूमे वी वैसे रंडी मुंडी अर्ण दिखी जई खन उद्देशे जई नगाविया होई मुती ता सुने सियाला लोम उपादन अथी सिद्धि ता जुवई नियम्बह पिच्छी गहने दिथ मौक ता मोरह चमरह उंश भोजने होई जान ता करही तुरंग। शास्त्र ज्ञान के विरुद्ध ये सिद्ध कवि भी स्व संवेद्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। सरह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सा संवित्ति तत्वफलु अर्थात स्वक संवित ही तत्वफल है। शास्त्र का पढ़ना वे उसी हद तक उचित समझते थे जिससे शास्त्र से मुक्त हुआ जा सके। सरह के अनुसार ताव से अक्खर घोलिया जाव निरक्खर होई। डॉक्टर शून्य प्रबोध चंद्र बागची द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ द डिपार्टमेंट में ऑफ लेटर्स जिल्द 28 में संपादित 1935 पेज नंबर 208 इन सिद्ध कवियों का भी आदर्श समरसता है। जरामरण से मुक्ति तभी मिलती है जब सहज भाव से चित्त को निश्चय करके समरस से राग किया जाए। कांट के अनुसार सहजे निचल जेन किय समरसे निय मन रा सिद्धो सो पुनीतक खने नऊ जरामरणे भा। लेकिन जैनियों से इनमें विशेषता यही थी कि सहज मार्ग पर ये विशेष बल देते थे। काय क्लेश इन्हें पसंद न था। सरह ने अपने से बाहर मोक्ष को ढूंढने वाले तथा ज्ञान विदंबित भेष वाले क्षपण की मोक्ष की खूब खिल्ली उड़ाई है और अंत में सरह भनी खवनान मोख महु किमिप न भावई तत् रहिया का अनताव। पर केवल साही कभी वे सहज ढंग से जीवन यापन का आग्रह करते हुए पशुओं की तरह वन्य जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा करते हैं। सरहे गहन गुहिर मग कहिया पशु लो निवही जिम रहिया। इसे अभिधा में न लेकर सामाजिक आडंबर की तीव्र प्रतिक्रिया ही समझना चाहिए। इससे उनके सामाजिक असंतोष का अनुमान लगाया सकता है। जीवन में सहज का व्यवहारिक रूप था गृहस्थ और संन्यस्थ स्थितियों के दो छोरों के बीच गृहस्थ जीवन में ही अनासक्त होने का प्रयत्न करना। इसी बात को घर और वन के प्रतीकों द्वारा सरह कहते हैं घर ही मा थक जाही वने जही तही मन मरिया। जैन मुनियों ने जीवन के इस रागपूर्ण पक्ष पर जोर नहीं दिया था। वे अधिक से अधिक देह को देवल कहकर ही रुक गए। बौद्ध सिद्धों ने राग में विराग की स्थापना को और राग को विराग का आवश्यक साधन माना। सरह का कहना है घरबड़ खजजड़ सहजे रजजई किजजई रा विरा निया पास बैठी चित भट्ठी जोइनी महु पदिहाय। इसी बात को कान्हने धरनी के रूपक से कहा है। इस तरह इन सिद्ध कवियों ने जीवन के राग विराग में भी समरसता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस सहज समरसता को ही उन्होंने परम महासुख कहा है। कुल मिलाकर सिद्धों की रचनाओं में जीवन के प्रति बहुत बड़ा स्वीकारात्मक दृष्टिकोण है। उनके दर्शन का यही रचनात्मक पक्ष है जो उन्हें आशावादी बनाए रखता है। इतने अधिक विरोधों के सम्मुख अडिग रहना उनके आशावाद का पक्का प्रमाण है।